ओम शांति। कल सारे देश में बल्कि सारे विश्व में शिवरात्रि मनाई जाएगी और कल मधुबन में चैतन्य शिव जयंती वो भी 81st मनाई जाएगी और सदाशिव परमात्मा चैतन्य में आएंगे, अपने ब्रह्मा बाबा के भाग्यशाली रथ में पधारेंगे और उनके मुखारविंद द्वारा अगली शिव जयंती तक हमने क्या करना है वो सारा प्लान हमको बताएंगे और केवल हम बच्चे ही, सालिग्राम बच्चे ही चैतन्य में बाबा के साथ ब्राह्मण रूप से प्यारे बाबा का भी और अपना भी जन्म दिवस मनाएंगे। सारे कल्प में कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं होगा जिसमें पिता और बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाए। भले ताली बजाइए, आपका ही जन्मदिन है। तो हमारे आप सबके और प्यारे परम पिता के 81st जन्मदिन की सभी को क्या बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पंजाबी में कहते हैं लख लख बधाइयां हो, आप सबको लख लख बधाइयां हो। अच्छा, दुनिया में जन्म दिवस एक दिन के लिए मनाया जाता और हमारा जन्मदिन कितने समय के लिए मनाया जा रहा है, हैं? सारा संगम युग ही हमारा जन्मदिन मनाया जाता है, हर रोज जन्मदिन है। इसलिए इसके लिए भी ताली बजाइए, कितना लंबा जन्मदिन किसी का होता नहीं है। और दूसरी ओर इस जन्मदिन के ऊपर जो सारे कल्प के इतिहास में सबसे ज्यादा खुशी देने वाला, सुख देने वाला और सब दुखों से छुड़ाने वाला परमात्मा शिव का ही कर्तव्य है कि बेहद की ब्रह्मा की रात को किसमें बदलना, बेहद के ब्रह्मा के दिन में बदलना और साथ साथ ब्राह्मणों की भी ये रात है उसको ब्राह्मणों के दिन में बदलना। तो इतना महत्वपूर्ण ये दिन है जिसके यादगार में अन्य बहुत से उत्सव भारत में मनाए जाते हैं, बहुत से शास्त्र लिखे गए हैं और वो ऐसा महान उत्सव हम चैतन्य में मना रहे हैं, दुनिया वाले उसका यादगार में मना रहे हैं। अब बाबा क्या कहते हैं कि केवल मनाना है या के दूसरे भाई बहनों को भी वो बाबा का रोशनी देकर जन्मदिन के निमित्त उनको भी मनाने के लिए मौका देना है, क्योंकि अगर हम मौका नहीं देंगे तो बाद में वो कहेंगे कि हमारे भी परम पिता शिव आए और आपने तो बड़ी अच्छा किया पर हमें क्यों छोड़ दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये भी हमारा एक परम कर्तव्य है कि अपने अन्य परिवार के लोगों को, दुनिया की बात नहीं है, जो बाबा ने परिवार रचा, जो अभी ईश्वरी परिवार है और कुछ दिन के बाद क्या बन जाएगा, दैवी परिवार, तो उसके बाकी भाई बहनों को अगली शिव जयंती से पहले पहले हमने ये संदेश भी देना है। और कैसे देना है, बाबा कहते हैं वाचा द्वारा तो बहुत समय दे लिया, 81 इयर्स दे लिया, और साधनों के द्वारा भी 81 इयर्स हो गए, अब कोई स्पेशल काम करना पड़ेगा ताकि वो संदेश फैल जाए और आपके सामने भी ना हो सुनने वाले, उनको भी वो संदेश मिल जाए। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा है कि अपने आप को पूर्ण तौर पे शिव के बलिहार चले जाओ, जो हर एक से जो बाबा का संदेश है, बाबा ने जो बच्चों को बनाया है, फरिश्ता बनाया है, वो उन आपके चेहरे से, आपके चलन से, आपके व्यवहार से सबको अपने आप दिखना शुरू हो जाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो अपनी तैयारी करनी है और दूसरे जो दो युगों से हमारे भाई बहन भटकने लग गए, खोज करने लग गए, अनेक प्रकार के भ्रांतियों के और अज्ञान के जंगल में फंस गए हैं, उनको जंगल से निकलने का रास्ता बाबा ने हमें बताया है और हमें अपने भाई बहनों को बताना है। अर्थात भक्ति में भटक भटक कर थक जाने वालों को, जो केवल कल फिर उसी प्रकार से शिव जयंती मनाएंगे जैसे वो मनाते हैं, उससे छुड़ाना है। और उसके लिए प्यारे बाबा ने हमको बहुत से अनेका अनेक जो उनके मन में भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के बाबा ने हमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है, ताकि जैसे अंधे के आगे आईना होता है, उनको आप वो दिखाएंगे तो उनकी समझ में आएगा। पहली सबसे बड़ी भ्रांति क्या है, आप देखेंगे जो सबसे बड़ी प्रथम भ्रांति है वो है शिव और शंकर को एक करना। जब भी आप उनसे सदा शिव का, निराकार शिव का नाम लेंगे तो शंकर जी को जरूर वो बीच में ले आएंगे। वो क्योंकि शंकर आकारी मूर्त वाले हैं, शिव तो निराकार हैं, भले कितना भी बड़ा शिवलिंग बना लो, लेकिन युगों से जो उनके अंदर ये ठोक ठोक कर, किसी के अंदर गलत बात भी ठोक ठोक कर भर दी जाए तो उसको वो सच मानने लग जाता है। जैसे हम सब भी, अब बाबा ने बताया तुम आत्मा हो, है छोटी सी बात और कितनी सत्य बात है, हमारी समझ में आ गई, लेकिन सारी दुनिया की आत्माओं को ये जो गलत फहमी है कि हम शरीर हैं, अब बताओ उसको निकालना कितना कठिन है। वो समझते ही नहीं हम शरीर नहीं है। कई धर्मों वाले तो शरीर का जब समाप्ति होती है वो समझते हैं सब खत्म हो गया। इसलिए अब जागृति करने वाला जो है वो कहते हैं कि इतनी सारी भीड़ में, इतनी सारी भ्रांतियों में शिव को अलग करना और उनको बताना ये आपके पिता हैं, तभी हम उस शिव के संदेश को पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे, धारण कर सकेंगे। आजकल तो मनुष्यों ने भी अपने नाम शिव पर रखे हुए हैं, हो सकता है हमारी सभा में भी बहुत सारे शिव कुमार बैठे हों, है ना? तो इसलिए बाबा कहता है वो तो कुमार कहते हैं, कई तो शिव ही शिव कहते हैं। इसलिए बाबा कहता है बहुत भ्रांतियां हैं, लेकिन सबसे पहली और कॉमन भ्रांति यह है कि शिव और शंकर एक है। आम तौर पे कह देते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ। अब हम तो चैतन्य में शिव जयंती जहां से शुरू हुई थी उस जगह पर आ गए हैं, सोर्स पर, और हम सारी बात को समझते हैं और यथार्थ मना रहे हैं। किसी भी बीके को कोई सपने में भी कहे शिव शंकर एक है तो क्या कहेगा? कहेगा नहीं है। इसी प्रकार से जैसे कोई कहे तुम शरीर हो, हम कहेंगे नहीं है। तो शिव शंकर बाबा ने बहुत सी बातें बताई हुई हैं, सभी भाई बहन मुरलियां पढ़ते हैं तो देखेंगे कि शंकर जी चौकड़ी लगाकर एक योगी के रूप में बैठे हैं। ज्यादातर उनको इसी रूप में दिखाया जाता है और उनके सामने ज्योतिर्लिंगम जिसको शिवलिंग कहते हैं वो प्रतिमा है। क्या कर रहे हैं? ध्यान मगन है। शंकर जी को हमेशा ध्यान लगाए हुए दिखाते हैं। अब परमात्मा का तो सभी ध्यान करते हैं, और परमात्मा इस प्रकार से योग लगाकर बैठे हों और किसी का ध्यान कर रहे हों, ये तो होता ही नहीं। तो इसलिए ये बात हम उनको स्पष्ट बता सकते हैं कि परमात्मा और शंकर दोनों की मूर्तियां साथ साथ दिखा रहे हैं तो दोनों अलग अलग तो होंगे ना। अब मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि शिवरात्रि को कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहते, कभी नहीं कहते। और बहुत सारी बातें आपको पता हैं, वो आकारी हैं, वो निराकार हैं, वो विनाश के निमित्त हैं। अर्थात किसी को भी हम शिव का परिचय दें, नहीं तो परिचय देने के बाद भी वो चले जाएगा और शिव का भी सुन लेगा, फिर कहेगा शिव शंकर ही। चलो इससे नेक्स्ट क्या है, वो इससे भी ज्यादा डेंजरस बात है। ये तो शिव और शंकर अलग अलग तो दिखाते हैं। कई बार हम कह देते हैं कि गांधी जी का नाम क्या था? गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। असल में उनका नाम करमचंद गांधी था, लेकिन हमारे देश में ये बताने के लिए कि कौन से कुल का है, किस खानदान का है, तो पिता का नाम साथ जोड़ देते थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी मीन्स कि करमचंद गांधी मोहनदास गांधी के बच्चे थे। अगर हम कहते हैं इस हिसाब से शिव शंकर भोलेनाथ, तो शंकर जी शिव के बच्चे हो गए, शिव से उनका कनेक्शन है। कभी ये नहीं कहेंगे शंकर शिव भोलेनाथ, तो पिता और पुत्र का हो गया। दूसरी भ्रांति क्या है कि आजकल क्योंकि तमो प्रधानता आ गई है, बाबा कहते हैं ना कोई सोचता है ना कोई समझता है, सत्य वचन कह देता है। बहुत सारे महात्मा अपने को शिवो हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, रटो शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, ये मंत्र तुम्हारा कल्याण करेगा। खुद भी कहते हैं और दूसरे को कहते हैं तुम भी यही मंत्र जपो शिवो हम शिवो हम शिवो हम। अब आप सोचिए कि कम से कम शिव शंकर में अलग अलग तो चित्र हैं। शंकर ये तो नहीं कह रहा शिवो हम, शंकर जी नहीं कह रहे शिवो हम, और ये खुद भी कह रहे हैं शिवो हम, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, दुखी हैं। क्यों मंत्र रटो? क्योंकि हमारी सदगति हो जाए। अगर शिव हो तो तुम्हारी सदगति तो हो ही रहनी चाहिए। तो ये दूसरी भ्रांति है जो हमें खत्म करनी है कि शिवो हम कहना गलत है। इसके बाद बाबा ने बताया हुआ है हम सो सोहम हम सो सोहम हम सो सोहम, या आपे ही पूज आपे ही पुजारी। तो बाबा कहता है ये भी खत्म कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि शिव परमात्मा ही हमारे रूप में आ गए हैं और हम ही कभी शिव परमात्मा थे, हम पूजा कर रहे हैं हम ही कभी शिव थे। नहीं, बाबा ने कहा ये बात भी उनको समझानी है कि शिव अलग है, परमपिता है, और हम शिव नहीं है। तो हम सो सोहम उसी प्रकार की बात है जैसे कहें शिवो हम शिवो हम। अच्छा, उसके आगे प्रायः कहा जाता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये कुछ ठीक है, आधा ठीक है, परंतु इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ओम को ही भगवान मानते हैं, ओम ही परमात्मा है। तो कम से कम इससे ये स्पष्ट होता है कि दो परमात्मा नहीं हो सकते और एक परमात्मा दूसरे को नमः नहीं कर सकता, इसलिए शिव परमात्मा है और ओम आत्मा है। तो ये बात भी हम इसको पकड़ करके क्लियर कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, हमारे देश में श्री राम को भी भगवान का अवतार कहते हैं, श्री कृष्ण को भी भगवान का अवतार कहते हैं और शिव को भी परमात्मा मान लेते हैं। अब इनके अंदर भी फर्क बताना पड़ेगा, नहीं तो आप शिव का परिचय दे दो, कल वो जाके कहेंगे श्री कृष्ण भी भगवान है श्री राम भी भगवान है। तो बाबा कहते हैं इसको स्पष्ट करो कि राम और कृष्ण जी को लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड रामा कहते हैं और शिव को गॉड शिवा कहते हैं। अब वो शरीरधारी देवता के रूप में है, उनकी पूजा भी देवी देवता के रूप में होती है। फिर बाबा कहते हैं कि उनको बताइए कि कोई भी साकारी कोई भी आकारी रूप वाला देवता के रूप से पूजा जाता है, परमात्मा के रूप से नहीं। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर महादेव कह दें शंकर देवाय नमः, देव देव महादेव नमः कहते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कहते। और सबसे खास बात यह है कि इतने भारत के अंदर हमारी असली शिव जयंती के यादगार हैं, लेकिन उनमें भगत भी नमन जब करते हैं तो केवल और केवल शिव को ही शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं और किसी की मूर्ति को परमात्मा ने नमः नहीं कहते। तो ये पक्की बात है, अगर इतने सारे देवी देवताओं में से किसी को जानना हो आखिर परमात्मा कौन है, तो कहो जिसको परमात्मा ने नमः कह के नमः किया जाता है वो परमात्मा है। तो पता लग जाएगा कि शिव की प्रतिमा परमात्मा की प्रतिमा। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि एक सबसे पॉपुलर शिव बाबा के बारे में ये कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसका क्या अर्थ हुआ, क्योंकि नहीं तो वो कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम, सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हमने बच्चों को बताया है, इसीलिए हम कहते हैं हम चेतन शिव जयंती मना रहे हैं। जो असली शिव जयंती थी जिसका यादगार में हम द्वापर से लोग मनाते आए हैं, उसका आधार ही है सत्यम शिवम सुंदरम। अब सत्य जो है तीन प्रकार का होता है, वैसे तो सत्य एक ही होता है, लेकिन अगर सत्य को अच्छी तरह समझना हो तो तीन प्रकार का सत्य होता है। एक है सत्य जो सदा ही सत्य रहता है, जो था भी सत्य है भी सत्य होएगा भी सत्य, अब वो है शिव। शिव सत्य है और इसीलिए सत्य की तुलना भगवान से की जाती है। कई जगह लिखा होता है ट्रुथ इज गॉड। अब देखिए गॉड इज ट्रुथ तो ठीक है कि परमात्मा सत्य है, सत्य तो एक मूल्य है, वो मूल्य इतना ऊंचा मूल्य है जिसको गॉड से तुलना की जाती है कि सत्य ही परमात्मा, सत्य ही शिव है। तो ये फर्स्ट नंबर का सत्य है क्योंकि ये कभी बदलता नहीं। शिव को सदाशिव गीत भी सुना, सदाशिव मैंने शिव सदा ही शिव रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं। अच्छा, आप कहेंगे दो तरह के बाकी सत्य कौन से हैं? अब आप देखेंगे कि दूसरा सत्य प्रकृति है। प्रकृति भी शाश्वत है, कभी भी ऐसा नहीं था जो सूर्य चांद सितारे आकाश धरती हवा जल नहीं था, लेकिन प्रकृति सत्य है, वो किसी के प्रभाव में आके सतो रजो तमो में आ जाती है। तो सत्य है सतो, लेकिन धीरे धीरे रजो में भी आ जाती है, तमो में भी आ जाती है। जब सत्य रूप में है तो सुख देती है, और जब आज के रूप में है तो प्रकृति दुख देती है। अब किसी देवी देवता को हम कहें आज वो बीमार है, आज उसको ये हो गया, है ही नहीं, अकाल मृत्यु है, तो प्रकृति तमोगुणी हो जाती है। लेकिन इस दूसरे प्रकार के सत्य का बदलने का आधार है तीसरा सत्य, जो आत्माएं हैं। हम सब आत्माएं जो हैं, हम भी तो सत्य हैं, अनादि अविनाशी हैं। जब हम परम धाम में हैं तो लगभग शिव बाबा की तरह ही हैं, क्योंकि हम घटती कुछ नहीं, हमारा नुकसान नहीं होता, ब्रांड न्यू रहती है। लेकिन जब हम धरती पर आ गए प्रकृति के साथ, तो पहले तो सतो ही होंगे, जैसे प्रकृति भी पहले सतो होगी, लेकिन हम भी आत्माएं जो हैं सत्य से शुरू होती हैं, लेकिन चलते चलते सत्य से रजो, रजो से तमो, फिर सतो पे आ जाती हैं। सभी सत्य रहते हैं, लेकिन परमात्मा सदा सत्य रहता है, और बाकी है, और बाकी धीरे धीरे पूरा चक्कर लगा के वापस सत्य में आते हैं। इस प्रकार का अनादि खेल है। इसलिए बाबा कहते हैं, जब सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, तो शिव जो परमात्मा है वो सदा सत्य है, और इसीलिए बाकी जितने बदलते हैं, रजो तमो में आते हैं, उसको वापस सत्य में लाने वाला वही है जो सदा सत्य है। और शिव जो है, इसके और भी दो अर्थ हैं, हम जानते हैं शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो जो कल्याणकारी है वो कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता, तो सदा शिव सदा कल्याणकारी है। अच्छा, शिव का अर्थ बिंदु भी होता है, बिंदी को कहते हैं, कई गिनती करते हैं ना, जैसे कहते हैं बरकत एक दो तीन, वो शिव एक दो तीन कहते हैं। तो शिव का स्वरूप और शिव का कर्तव्य शिवम में है। और सुंदरम का अर्थ क्या है फिर? सुंदरम का अर्थ यह है कि जब कोई भी चीज परफेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली वो सुंदर होती है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का रिंचक मात्र भी ऐसा होता ही नहीं, ना उसका स्वरूप ना उसका गुण, जिसमें कहें सुंदरता में कमी है। इसलिए परमात्मा सदा सुंदरम है, प्रकृति भी कभी सुंदरम थी, आत्माएं भी कभी सुंदरम थी सतयुग में, लेकिन वो सदा नहीं है। इसलिए सदा शिव, जिसको किसी ने नहीं रचा, इसलिए शिव को स्वयंभू भी कहते हैं, कि शिव को किसी ने नहीं रचा, शिव सबका रचने वाला है। आजकल उसको शंभू कह देते हैं, स्वयंभू को थोड़ा नाम बदल के शंभू कह देते हैं। और शिव के पास ही एक ऐसा मंत्र है, शिव कोई मेहनत नहीं करते नई दुनिया बनाने में, नई रचना रचने में, ना वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेहनत करें, क्योंकि जिसको सत्य पता लग जाए तो सत्य में तो मेहनत होती नहीं। जब तक सत्य पता नहीं लगता तो मेहनत होगी, भटकते रहेंगे। भक्ति में हम देखो भटकते ही रहे, शिव के इर्द गिर्द घूमते रहे, शिव की पूजा भी करते रहे, शिव परमात्मा नमः भी कहते रहे, साथ साथ फिर औरों को भी परमात्मा कहते रहे, शिव का भगवानों वाच भी सुनते रहे, फिर और शास्त्रों को भी पढ़ते रहे, तो इसको कहते हैं भटकना। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ चेतन शिव जयंती मनाता हूँ तो उनको छू मंत्र से, जादू से फटाफट दुनिया बदल देता हूँ। तो अब सत्यम शिवम सुंदरम तो हो गया, अब प्रश्न पैदा होता है कि जरा शिवलिंग को सामने लाइए, जिसकी हम जन्म जन्मांतर शिवरात्रि पर पूजा करते रहे हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि लोग निराकार की प्रतिमा को सामने रखते हैं, लेकिन समझते क्या हैं कि शिव कब आए, क्या किया, क्या कर्तव्य किया, वो भी नहीं जानते। तो दुनिया के अंदर दो चीजें हैं जिसको जानने के बाद ही आप सच्ची शिव जयंती मना सकते हैं, और हमको बाबा ने वो दोनों चीजें बताई। एक तो है समय। समय का अर्थ है हर चीज का समय होता है, परम धाम में समय नहीं है क्योंकि सदा शिव है ना, वहां दिन रात होते हैं। लेकिन इस धरती पर जिसने सतों से घूम करके फिर सतों में आना है, वहां पर समय का बड़ा प्रभाव है। सतो गुणी का भी समय है, रजो गुणी का भी समय है, तमो गुणी का भी समय है, तमो प्रधान का भी समय है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का भी समय। तो अगर कोई चीज समय पर नहीं की जाएगी कोई फायदा नहीं। आप शिवरात्रि मना लो, लेकिन वो असली शिवरात्रि बेहद की रात्रि का समय नहीं है, आप मना के आ जाओगे। तो एक बात तो ये है, अब समय कौन बताए? छोटी घड़ी में तो हम भी समय को जानते हैं, इस वक्त 6:04 हुए हैं। अच्छा, दिन रात का भी हो गया हम जानते हैं, शाम का वक्त हो गया। अच्छा, सीजन का भी देख लो तो हम कहें भी फरवरी का महीना है, थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है। लेकिन बड़े चक्कर में तो हम खुद आने वाले हैं, हमको पता ही नहीं, ना आगे का पता ना पीछे का। इसलिए बाबा कहता है, मैं सबसे पहले अपने बच्चों को समय का ज्ञान देता हूँ, मेरे आने का समय। अब आप देखिए, उस समय का वर्णन भी किया हुआ है भक्तों ने कि परमात्मा अति धर्म ग्लानी के समय आता है, लेकिन वो कौन सा समय है आज भी नहीं पहचानते। जब बाबा खुद आके बच्चों को कहता है कि अब सच्ची शिवरात्रि हो गई, अब जागो, गीत भी गाते हैं, उठ जाग मुसाफर भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है, हमारा भी अमृत वेले का गीत है, जागत है सो पाव। पर कौन सा जागना, कौन सा पाना, कौन सी मुसाफरी, कुछ पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है, मैंने तुमको समय का ज्ञान दिया। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज होती है संबंध। अगर आपका किसी से कोई संबंध ही नहीं है तो लेना देना क्या, कहेंगे ना मेरा इससे क्या लेना देना। तो बाबा कहते हैं, सारी दुनिया की आत्माएं शिव बाबा की संतान है, लेकिन उनका संबंध जुड़ता ही नहीं। उनका जो भी शरीरों में आते हैं, उनका संबंध अपने धर्म पिताओं से जुड़ता है, लौकिक से जुड़ता है, किसी से भी जुड़ता है, लेकिन सोर्स बीज से तो जुड़ता ही नहीं। इसलिए वो बेचारे शिव की संतान हैं, लेकिन सच्ची शिव जयंती नहीं मना सकते। ये भी खास बात है, हम बच्चों का संबंध भी है। अब बाबा कहते हैं, तुमने खुद भक्ति मार्ग में आके, हमारे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं पहले पहले किसका मंदिर स्थापित किया, बाबा हमें बताते हैं, हम भी साथ ही होंगे सब शिव का, क्योंकि शिव ने ही ज्ञान दिया था। फिर बाबा कहते हैं, शिव का ही नहीं है, जन्मदिन हमारा बाबा का, दोनों का है। इसलिए शालिग्राम भी साथ ही पूजे जाते हैं मंदिर के अंदर। वो ये भी नहीं जानते शालिग्राम कौन है, उसको वो विष्णु कह देते हैं, परंतु इसलिए कहते हैं कि हम आत्माओं ने विष्णुपुरी में जाके जन्म लिए हुए हैं, पूजा तो हमारी देवता रूप की होगी ना, इस रूप की तो होगी नहीं, इसलिए यादगार है। तो बाबा हमको नेक्स्ट साल में क्या बताते हैं, दो मालाएं हैं। आज भी अमृत वेले बाबा ने क्या कहा कि ये मत समझो कि 8 की माला है, 108 की है, हम उसमें नहीं आ सकते, 16,000 की है, 16,000 से तो ज्यादा है, सभा में बैठे हैं, हैं? बाबा कहता है, तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑलमाइटी हूँ, उसके साथ लड़ियां जोड़ दूंगा। हर माला में आप देखेंगे लड़ियां होती, बड़ी बड़ी भी होती हैं। इसलिए बाबा कहता है, दो मालाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है वो किस चीज की माला है। एक है रुद्र माला, शिव रुद्र हैं, इसलिए उस माला में तो सारी दुनिया की आत्माएं हैं, आत्मा के रूप में उनके बच्चे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है, ना समय का ज्ञान है। एक है विष्णु की माला, रुंड माला, और उसमें कौन है, उसमें बाबा के बच्चे हैं, उसमें सिरियां होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब मैं अवतरित होता हूं तो दो तरह के मेरे बच्चे हो जाते हैं, एक वो जो मेरे समय को जानते हैं, मेरे से कनेक्शन है, बिल्कुल बीच से डायरेक्ट कनेक्शन है, शिव बाबा आते ही तब हैं जब पुराना वृक्ष समाप्त होना होता है। और ये भगवानों वाच की गीता में लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण और देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। अब कल्प की आदि कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, कौन सा यज्ञ रचा, बाबा कहते हैं लिखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं आपके आपको सच्चा बताता हूं। इसलिए दो मालाएं हो जाती हैं, बाबा आते हैं तो क्या करते हैं, सबको वापस ले जाते हैं, लेकिन जो रुद्रमाला वाले हैं सब उसमें पहुंच जाते हैं। ऐसे नहीं विष्णु वाले रुद्रमाला में नहीं होते, वहां वो सबको शांति धाम में अपने पास बैठा के विष्णु की माला वालों को नीचे भेज देते हैं। इसको सर्जिकल ऑपरेशन भी कहते हैं। आपने सुना होगा आजकल सर्जिकल ऑपरेशन बड़ा प्रसिद्ध है कि भारत सरकार ने सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया। भारत सरकार ने दो काम किए हैं जिनका कनेक्शन डायरेक्ट ज्ञान से है पर उनको पता नहीं है। क्या, पहला तो किया पैसा बदल दिया, पुराने खत्म कर दिए नया चालू कर दिया। बाबा भी यही कर रहा है कि बच्चा तुम्हारे डॉलर फलाना पाउंड शाउंड रुपी वगैरह कागज के नोट नहीं चलने। सतयुग में क्या कागज के नोट होते हैं, ये तो मुगलों के टाइम में भी सिक्के होते थे। तो उस वो तुमको कागज के नोट भी नहीं चलने, भिखारी दुनिया भी नहीं चलनी, ये शरीर भी खराब नहीं चलने, इसलिए इसका पहले से एक्सचेंज कर लो मौके से पहले। सब लोगों ने भाग भाग के किया था। और दूसरा किया सर्जिकल ऑपरेशन। अब ये भी हमारे पर लागू होता है। जब शिव बाबा नीचे आते हैं तो कौन उनको पहचाने, बाबा कहते मेरे पास हीरे हैं, ज्ञान के रतन हैं, कौन धारण करेगा। तो ये अति आवश्यक है कि रतन धारण करने वाला पात्र ठीक होना चाहिए, है ना। बाबा कहता है कीमती रतन को बहुत कीमती डब्बी में रखा जाता है। और ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहता है गोदड़ी में लाल, वो शिव बाबा आते किस में, सबसे ज्यादा कीमती शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के अंदर आते हैं जो के पात्र हैं। अब बाकी आत्माएं हैं उसको सब कलयुग में आ गए तमो पर धान हो गए, ज्ञान किसको धारण कराए, प्रश्न पैदा होता है, ज्ञान किसको धारण कराए। तो जिसकी बुद्धि में तमो गुण होगा, सब भूसा भरा हुआ होगा, उसमें ज्ञान कैसे धारण कराएगा। तो शिव बाबा एक सर्जिकल ऑपरेशन कर देता है। वो शास्त्रों में लिखा हुआ कि शिव ने अपने ही बच्चे को सिर काट के उस पे हाथी का सिर लगा दिया, है ना। और वो हाथी का सिर किस पे लगाया, एक बच्चा थोड़ी है शिव का, वो सारे बच्चे जिनको बाबा ने ज्ञान धारण करवाना है उसकी बुद्धि को, प्राणी बुद्धि को खत्म करके नई बुद्धि लगाए ताकि उसके अंदर ज्ञान धारण हो। तो जो जो बच्चे बाबा के गर्दन कटवा के हाथी का सिर लगवाए हुए हैं वो आएंगे विष्णु की माला में, और उनका नाम गणेश है, ठीक है। अच्छा, तो हम सब क्या देख रहे हैं, हम सब एक दूसरे को गणेश के रूप में देख रहे हैं। लड्डू खाना है और बस बैठे रहना है। अच्छा, तो बाबा कहता है उसकी निशानी क्या, क्या प्रूफ है कि हम गणेश हैं। आप देखेंगे किसी भी कार्य का शुरुआत किया जाएगा शुभ कार्य का, उस वक्त गणेश को याद करते हैं। गणेश का नाम भी क्या है, विघ्न विनाशक है। और उसकी एक चिन्ह भी बनाते हैं, एक तो उसका स्वरूप बनाते हैं और एक स्वस्तिका भी बनाते हैं। वो स्वस्तिका क्या है, वो भी संगम युग है क्योंकि उसी वक्त गणेश पैदा होता है। तो कोई बही खाता खोलना हो, किसी मकान की ओपनिंग करनी हो तो गणेश जी को लाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता है ये यादगार किसका है, वो तो मनाते हैं, हम तो असली कर रहे हैं, चैतन्य है। तो चेतन सब, बाबा कहता है जो मेरे गणेश बच्चे हैं जो नई चीज को धारण करते हैं, नई दुनिया के निमित्त बनते हैं, पुराना फिनिश, वो है गणेश। तो बाबा ने सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया और हम सबको गणेश बना दिया। अब बाबा कहते हैं कि जो तीन लकीरें बना दी शिव के साथ, तीन तीन बातें जोड़ी हुई, बहुत सारी तीन बातें हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे कर्तव्य, कि आखिर परमात्मा ने क्या किया। तो ये अगर हम समझाएंगे तो शंकर जी भी आप ही बाबा से अलग हो जाएंगे, ब्रह्मा जी भी सेपरेट हो जाएंगे, विष्णु जी भी सेपरेट हो जाएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं देखो तीन लकीरें, त्रिपुंडी, और शिवरात्रि को जो पत्ते चढ़ाते हैं शिव बाबा पर, बेल के पत्ते, वो भी तीन तीन वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं परमात्मा निराकार, लेकिन निराकार तो कुछ कर नहीं सकता। कल दादी जानकी कितने प्यार से कह रही थी, बेचारे बाबा को तो बोलने का मुख भी नहीं है। तो बाबा कहता है कि निराकार कुछ नहीं कर सकता, तो निराकार को कर्तव्य करने के लिए माध्यम बनाने हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बनाए। फिर त्रिमूर्ति हो गया, त्रिनेत्री हो गया, त्रिकालदर्शी हो गया, त्रिलोकीनाथ ये प्रसिद्ध है। पर हमने त्रिमूर्ति का क्या किया, त्रिकालदर्शी का क्या किया? पहले त्रिलोकीनाथ को ले लो। जैसे आज बहुत सारे लोगों ने अपना नाम त्रिलोकीनाथ भी रखा हुआ, शिव भी रखा हुआ, त्रिलोकीनाथ रहेंगे किराए के चुबारे में, किराया देने को पैसे भी नहीं है, नाम क्या है जी, मेरा त्रिलोकीनाथ है। तो फिर बाबा का नाम तो बदल दिया, वो भी शिवोहम ही हो गए। अच्छा त्रिनेत्री, वो समझते हैं शिव जी ने आंख खोली, और उसमें भी शंकर को मिला देते हैं कि शंकर जी ने आंख खोली, विनाश हो गया। अब बाबा कहता है क्या परमात्मा कभी आंख बंद करते हैं जो खोलेंगे? शंकर जी भी वो तो देवता है। तो बाबा कहते हैं हमारी तीसरी आंख खोली। दुनिया वाले समझते हैं शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, बाबा कहते हैं जो सोया हुआ होगा अंधकार में होगा उसकी खोलेगा ना, तो हमारी तीसरी आंख खोली तो हो गया त्रिनेत्री। हमारी क्या आंख खोली, यहाँ पर दिखाते हैं दिलवाला मंदिर में। बाबा कहते हैं देखो हर एक के वो लगा हुआ है, भारत में बिंदी भी लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, लेकिन असली तीसरी आंख खोलने का मतलब है हमको आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा यहाँ रहती है, पहले ये दो आंखें से देखते थे हम, अब तीसरी आंख से आगा पीछा पता लग जाता है। तो इसलिए आंख हमारी तीसरी खोली। त्रिमूर्ति अपने उसके तीन रूप नहीं है लेकिन तीनों को रचता है। अच्छा त्रिलोकीनाथ, अब बाबा कहते दुनिया में किसी को नहीं पता आकाश लोक कौन सा है, पाताल लोक कौन सा है, मृत्यु लोक कहाँ होता है। तो बाबा ने हमको सेकंड में हिस्ट्री पढ़ा दी, तीनों कालों को जानना हो सुदर्शन चक्र है, तीनों लोकों को जानना ज्योग्राफी बता दी। एक ब्रह्मा कुमार छोटा भी बता सकता है कि तीन लोक हैं ये हैं। तो बाबा कहते ये मैंने अपने गणेश बच्चों को पढ़ा दिया, तो हमको मालूम पड़ गया कि समय क्या है, और इस समय हमारा बाबा से कनेक्शन है, हम उससे वर्षा ले सकते हैं। तो ये शिव जयंती हम मना रहे हैं या वो मना रहे हैं? अब बाबा कहते मेरे बहुत से बच्चे हैं, इकट्ठे तो बच्चे नहीं आ जाएंगे, पहले मैंने ब्रह्मा जी को अडॉप्ट किया फिर दूसरों को। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, और वो ये है कि बाबा बताते हैं कि जो सिस्टम मैं चालू करता हूं वो सिस्टम फिर लौकिक में आता है, पहले अलौकिक में आता है, क्योंकि उस परलोक में तो कुछ, निराकार में तो कुछ होता नहीं। अब परमात्मा को संतान रचनी है, तो बाबा कहता है सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि परमात्मा माता पिता बनते हैं, वो कहेंगे गॉड फादर, सारी दुनिया में घूमे आओ गॉड फादर। अब भारत वाले क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। गीता के शुरू में ही लिखा हुआ है तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अब प्रश्न ये है कि निराकार भगवान माता कैसे बनेगा, इसलिए बाबा कहता है कि मैं अडॉप्ट करता हूं। सारा सिस्टम अडॉप्शन से है, जन्म से नहीं है। पहले तो शिव बाबा भी जन्म नहीं लेता, वो रथ को अडॉप्ट करता है, फिर अडॉप्ट करके उसको माता बनाता है, फिर उसके द्वारा हमको भी अडॉप्ट करता है। तो दुनिया में बाबा ने बताया हुआ है कि यूं तो कोई अमीर व्यक्ति हो उसके घर में संतान ना हो, उसको बच्चा अडॉप्ट करते हैं। लेकिन स्त्री पुरुष जो हैं वो शुरू से अडॉप्टेड होते हैं। जो स्त्री होती है वो पति के घर की रिश्तेदार तो नहीं होती ना, दूसरी फैमिली से आती अडॉप्ट होती है ना, और उसके द्वारा संतान रचते हैं। तो ये सिस्टम कहाँ से रचा गया? तो बाबा कहते हैं मैंने आके, क्योंकि मुझे रथ चाहिए, पहले तो रथ को अडॉप्ट किया, फिर उसके द्वारा आपको अडॉप्ट किया, और आपने फिर आगे अडॉप्ट किया। तो संगम युग का सारा संबंध अडॉप्शन का, और हम और आप सब भाई बहन हैं। किस नाते से हैं? बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, सीधी बात है ना। अब बाबा कहते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज समझने की है। वो कहेंगे क्या प्रूफ है? परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, ऊपर से नहीं कर सकता आदि आदि। जैसे आज बाबा ने बताया कि कई कह देते हैं तुम तो सब जानते ही हो, अब आपको क्या बताने की जरूरत है। अब बाबा कहता है चलो मैं सब जानता भी हूं, जो ब्रह्मा बाबा है वो थोड़ी सब जानता है, इसलिए तुम बताओगे नहीं तो ब्रह्मा बाबा तो डायरेक्ट तुम्हारी माँ है, उसको डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे, अपनी माँ को तकलीफ नहीं बताओगे तो पालना कैसे करेगी। तो बाबा के सिस्टम सेट है। फिर कहता ऊपर से कर दूं तो नंबर कैसे बनेंगे तुम्हारे, मैं तो सबको कर दूंगा। इसलिए पहली बात है अडॉप्शन, और प्रूफ इसका क्या है कि परमात्मा को तो दिखाते हैं परम धाम में, लेकिन जगदम्बा को धरती पर दिखाते हैं। शंकर जी को भी चलो सूक्ष्म लोक में ले जाएंगे, वो लंबी कहानी आप जानते हैं कि बैल होता है वो शिव का रथ है, लेकिन उन्होंने शंकर जी की सवारी दिखा दी। लेकिन जगदम्बा जिसको बाबा कहते हैं, कई नाम से कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, काली भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं, वो तो यहाँ है। तो जगदम्बा जगत की अम्बा कैसे बन गई? जरूर परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया ब्रह्मा को, उसके द्वारा ज्ञान देकर उसको जगदम्बा बनाया, तो जरूर नीचे आए होंगे माता पिता बने। तब बाबा कहते हैं शिव जयंती को हमें चेतन मनाने के लिए, ये सारी लंबी चौड़ी कहानी मैंने इसलिए रिपीट की है, हम सबको पता है, पर जो दिन होता है उस दिन याद किया जाता है। उससे तीन चार बातें निकलती हैं। एक तो ये कि हम सब मर जीवा हैं, हमारा अलौकिक जन्म है, और जब कोई अलौकिक जन्म ले लेता है तो पिछले जन्म को नहीं याद करता, पिछला जन्म उसके लिए भूत बन जाता, भूतकाल पास्ट। तो अगर हमने ब्राह्मण बनके और यात्रा करनी है, उठ जाग मुसाफर मुसाफरी करनी है, तो पहली बात है कि लौकिक समाप्त। हमारा लौकिक नाम है, जानकी दादी कहती मेरा लौकिक नाम है, लेकिन लौकिक नाम को भी अलौकिक समझ के हमने यूज करना। लौकिक शरीर अलौकिक, हमारा क्या नाम है सबसे पहले क्या लिखा जाता है? जैसे डॉक्टर के आगे डॉक्टर लिखा जाता है, हमारे आगे लिखा जाता है बी के। हम सब कौन है? जो समझते हम बी के हैं उधर हाथ उठाना, बी के। अच्छा, अब दूसरे प्रश्न के लिए भी तैयार रहो। जो समझते हम ब्राह्मण है वो हाथ उठाना। ब्राह्मण और बीके में कुछ फर्क है? जो समझते कोई फर्क नहीं है वो हाथ उठाना। जो बाटा के शूज होते हैं, बाटा कंपनी में जाओ तो बाटा नाम से मिलते हैं, किसी और जगह लो तो उसमें बीएससी लिखा होता है, कभी बाटा का शू आपको दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से बीके सारे हैं। आपको पता है कि बीके सतयुग में भी आएंगे, बीके त्रेता में भी आएंगे, लेकिन जो ब्राह्मण है वो त्रेता में नहीं आएंगे, सतयुग में आएंगे। हो गया फर्क? इसलिए तो ब्रह्मा के मुख से कौन निकले? ब्राह्मण निकले। अब बीके जो होता है उसका सब, क्योंकि ज्यादा तो बीके हैं तो ब्राह्मण तो उसमें से निकलेंगे, उसमें भी सतयुग की याद वाले निकलेंगे कुछ बात के। तो बीके का मतलब है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी शरीर में। अब देखो दुनिया में कुमारी तो कुमारी होती है, उसका सम्मान होता है पवित्रता के कारण, लेकिन एक बारी कुमारी शादी करके माता बन जाए वो दोबारा कुमारी बन सकती है? कुमारी तो माता बन सकती है, माता तो नहीं बन सकती। लेकिन बाबा ने अलौकिक जन्म दिया तो माताओं को भी कुमारी बना दिया कि नहीं? अब देखो जो जिन्होंने जुगल बने हुए हैं वो भी कुमारी, और भाई भी जो जुगल बने हैं वो भी कुमार, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार, ये वंडरफुल बात है कि नहीं? इसलिए बाबा कहता है कि अडॉप्शन करके तुम बन गए मर जीवा। हम सारे सेंटरों पे जाते रहते हैं, एक पुरी में सेंटर है, पुरी की बहन से पूछो आप कौन है, कहती मेरा नाम ही मर जीवा है। फोन पर पूछो कि मैं मर जीवा बोल रही हूँ, वंडरफुल बात है धारणा की। अच्छा उनके सेंटर में सब बहनों के नाम क्या है, फरिश्ता नंबर वन, फरिश्ता नंबर टू, फरिश्ता नंबर थ्री, इस तरह से है। लेकिन आप मुंह से ना बोलो, अंदर से तो है कि हम मर जीवा हैं और हम फरिश्ता हैं। फरिश्ता अपने फरिश्ता लोक में नहीं बनना, यहाँ बनना है। देवता अपने सतयुग में नहीं बनना, यहाँ बनना है। इसलिए सच्ची शिव जयंती मनाने के लिए पहली बात, हम अलौकिक हैं, हमारा अलौकिक जन्म है। संगम युग अलौकिक युग है, ना वो परलौकिक है ना लौकिक है, ठीक है? हम सब कौन हैं? अलौकिक हैं, ब्राह्मण हैं, और यहाँ रहते हुए हमको फरिश्ता बनना है। यहाँ रहते हुए देवता बनने की जरूरत नहीं है, देवता तो देवलोक में बनेंगे। तो यहाँ सज सजा के आ जाए तो ताज वगैरह लगा के तो जचेगा ही नहीं, है ना? इसलिए बाबा कहता है फरिश्ता। और फरिश्ता का क्या होता है, उसका ना घर होता है, ना देखने से लगता है ये पुरुष है या स्त्री है, और ना एक जगह टिकता है, और वो सदा सुख की बात करता है। किसी को दुख देने वाले का नाम फरिश्ता नहीं होता, भूत होता है, वो और तरह का फरिश्ता होता है। इसलिए अगर हम सच्ची शिव जयंती मना रहे हैं तो पहली बात के लौकिक फिनिश। बाबा को 81 वर्ष क्यों लग गए? बाबा कहते हैं मिक्स हो जाते हैं कभी लौकिक। बाबा ने कहा लौकिक को निभाओ, तोड़ निभाओ। तोड़ का मतलब होता है अंत तक निभाओ, और ये भी होता है कि तोड़ के निभाओ। जैसे मृत्यु के ऊपर वो तिनका तोड़ देते हैं ना, मटका फोड़ देते हैं कि अब ये गया, पर हमको जिंदा जी मर गए तो हमको क्या करना है? कभी गलती से हमने कह दिया मैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा सेंटर भी कह दिया, नहीं। अलौकिक का फरिश्ता का कोई सेंटर होता है क्या? नहीं, ये सब सेंटर आपके हैं। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है सच्ची शिव जयंती मनानी है, शिव के साथ शालिग्राम रहना है, तो एक तो बड़ा दिल रखो। शिव का दिल कितना बड़ा है बताओ? शिव बाबा जो खराब नीयत से भी आए उसको भी वरदान देते थे, जा तथास्तु, अपने आप भस्म हो जाएगा, है ना? इसलिए बाबा कहता है बड़ा किसी को ना नहीं करो, और दूसरे कल्याणकारी है तो हम भी, हमें सबको सुख देना है, कुछ ना कुछ देना है। बाबा ने कहा हुआ है गिफ्ट सबको देते रहो, कुछ ना कुछ दो, और हमारी देने वाली चीजें ऐसी हैं जो देने से बढ़ती हैं। अगर कोई देने से घटने वाली चीज हो, किसी को धन देना हो तो आप सोचेंगे धन दे दिया मेरे पास क्या रहेगा, है ना? कंबल दे दिया तो मेरा कंबल घट गया, नहीं। शिव बाबा कहता है ज्ञान तुम्हारा पहला सब्जेक्ट है, किसी को ज्ञान दोगे तो आपका ज्ञान घटेगा या बढ़ेगा? हैं, बढ़ेगा। अच्छा किसी को योग के रास्ते पे लगाओगे, तू भी बाबा से ले ले, तो आपका योग बल घटेगा या बढ़ेगा? आपके सारे लोग योग में रहने लग जाएंगे तो आपको ऑपोजिशन नहीं आएगा। दैवी गुण, अब किसी को आप दैवी गुण दे दोगे तो आपके कम हो जाएंगे क्या? हैं? कहते हैं किसी को मुस्कुराओगे तो आपकी मुस्कुराहट तो आपके पास है ना, दैवी गुण होती है खुशबू। अब किसी फूल में खुशबू है, आपने उसकी खुशबू अच्छी तरह प्राणायाम करके अपने अंदर धारण कर ली, पर आप उसकी खुशबू घटी फूल की नहीं घटी। अब रोज गार्डन में जाओ, सारी खुशबू आ जाएगी आपके अंदर, उसकी तो नहीं घटेगी। तो दैवी गुण एक ऐसी चीज है। और सेवा, सेवा का तो आपको पता ही है, सेवा मैंने देना, देना मैंने सुख। ठीक है, दुनिया वाले समझते हैं लेना मैंने सुख, हम समझते हैं देना मैंने सुख। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ता था, मुझे यही सिखाया गया कि लेने में फायदा है, देने में नुकसान है। जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आया, मुझे पता लगा नहीं, देने में फायदा, लेने में नुकसान है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ दी। मैंने कहा ये अच्छा सौदा है। अच्छा, अब आप सोचो, हर एक के पास देने के लिए कुछ ना कुछ होता है। एक राजा था, तो उस राजा जब बुजुर्ग होने लगा, किसी ने कहा तू मर जाएगा, जीते जी दान कर दे। उसकी समझ में आ गई बात, तो उसने क्या किया, सारी अपनी बहुत सारा धन था उसकी थैलियां बना ली और सारी प्रजा को कह दिया कि कल से आ जाओ, 10 से 1 बजे तक मैं आपको दान करूंगा। प्रजा बड़ी खुश हो गई, लाइन लग गई, तो जो आए एक थैली देता जाए। उस लाइन में एक फकीर भी लगा हुआ था दूर, बैगर। जब उसकी टर्न आई तो उसने अपनी टर्न अगले वाले को देके फिर लाइन में लग गया। सब हैरान हो गए। जब दोबारा उसकी टर्न आई काफी समय के बाद, फिर देके लाइन में लग गया। तो सारे मीडिया ने फकीर की हेडलाइन दे दी कि एक ऐसा फकीर है जो ये कर रहा है, राजा का कोई जिक्र नहीं जो पैसे दे रहा है। राजा को ईर्ष्या हो गई कि ये क्या, मैं इतना इतना धन दान कर रहा हूं और मशहूरी इसकी हो रही है। उसने फकीर को बुलाया, भाई तुम क्या करता है, अपना ले दो थैली ले ले जा, ये क्या कर रहा है। उसने कहा हजूर, मैं लाइन में दूर खड़ा था, मैंने देखा जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है, जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है। अब मेरे पास तो कोई देने को है नहीं, तो मैं अपना टर्न दे देता हूं, मुझे खुशी हो जाती है। इसलिए हर एक के पास देने को तो कुछ है, सिर्फ ये कि देने का रखेंगे तो देवता। तब बाबा कहता है कि शिव जयंती हम मना रहे हैं, बाबा हमको जो बाबा के गुण हैं वो बता रहा है। बाबा ने ये बता दिया कि दुनिया में आप जहां होंगे, जिस स्थिति में होंगे, ऑटोमेटिकली आपके संस्कार आएंगे। एक बुजुर्ग है, उसमें और तरह के संस्कार हैं। वो जब बच्चा होता है उसके और तरह के संस्कार होते हैं। आप गार्डन में चले जाओ, आपके और तरह के संस्कार होंगे। भीड़ में चले जाओ, आपके और तरह के होंगे। तब बाबा ने कहा कि प्रैक्टिस करने के लिए निराकारी, आकारी और निर्विकारी। जब हम परम धाम में चले गए, शांति 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 शांति, ऑटोमेटिक। वहां कोई है ही नहीं जिससे आप बोलेंगे, ना आप बोल सकते हैं, ना आपको पता है इधर कौन बैठा है, आत्माएं पड़ी हैं। आकारी में आ जाओ, आवाज है ही नहीं, इशारे से काम होता है। लोग कहते हैं इशारे से कैसे होता है, देवी देवता बहुत थोड़ा बोलते हैं, इशारे से काम हो जाता है, संकल्प सही हो जाता है। छोटे बच्चे भी भाषा भी नहीं जानते, उनका भी सारा काम हो जाता है। रो पड़ते हैं, मां समिति इसको दूध पिलाना, कोई तकलीफ है। जानवर को देखो, जानवर को भाषा आती नहीं, सारी लाइफ बता देता है, सब कुछ करता है, उसका भी काम हो जाते, कोई किसी तरह बोलता है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है ना। तो आकारी लोक में यही कहते हैं, आकारी लोक में क्या अनुभव है। अब सपना में, सपने में जाते हो, कल दादी जानकी जी ने भी बताया था, सपने में आप कुछ भी कर सकते हो, पर आप असली करते हो आपको फील होता है। तो फरिश्ता भी यही है, साकार में आ जाओ। बाबा कहते साकारी कलयुगी दुनिया में तो बहुत आ गए, या संगम में रहो या मधुबन में आ जाओ। तो 5 आपको सैर के स्पॉट्स दिए हैं बाबा ने, यहाँ रहो या वहां रहो या वहां रहो। और एक बाबा की मुरली अब सबसे बढ़िया बाबा ने बताया है कि सतयुग में सब कलाएं सबके अंदर होती है, और इस वक्त दुनिया के अंदर 9 कला 0 वाट बल्ब है। तो बाबा ने, आपने वो मुरली सुनी होगी, अभी अभी आई थी, बाबा ने कहा सतयुग में सब कुछ रियल होता है, वहां सिनेमा वगैरह नहीं होता, अर्थात वहां विजुअल रियलिटी नहीं होती कि पर्दे के ऊपर आपको दिखा दें गुलाब आ गया, चावल आ गए, असली होता है, डांस भी असली होता है, गीत भी असली होता है। और सतयुग में तो सबके अंदर सब कला थी, बाद में आके कोई कोई स्पेशलाइज कर गया, कोई डांसर बन गया, कोई म्यूजिशियन बन गया, कोई गाने वाला, कोई कुछ, वो भी फिर जगह जगह प्रेजेंट करते थे। अब तो वो भी खत्म हो गए, पर्दे के ऊपर दिखा देते हैं, पब्लिक देखती रहे। अगर सनराइज भी देखना हो तो पर्दे पर देखो, सनसेट देखना हो तो पर्दे पर देखो। तो बाबा ने कहा है कि जब तुम किसी डांसर को देखते हो और आप बड़े खुश होते हो, ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, हैं? कभी गर्दन घुमाता है, कभी आंखें, बाबा कहते हैं तुम सब ये डांस कर सकते हो, कर्म योगी बन जाओ। आखिर कर्म में आप क्या करते हैं, हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, आंखें चलाते हैं, मुख चलाते हैं, वो करते हुए अगर आप ये समझो कि मैं डांस कर रहा हूं, समझा, तो आपकी कला हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और कोई भी कर सकता है। इसलिए कर्म योग डांस करते हुए करो, तो हो गई शिव जयंती आप पे कि नहीं। तो इसलिए कला, एक्टर होता है दुनिया में भी, वो भी चलता है, फिरता है, सोता है, चाय पीता है, कुछ भी करता है, वो कला से करता है। तो बाबा कहते आप सारे एक्टर हो, इसलिए हमको चैतन्य शिव जयंती मनाने के लिए बाबा ने इतना अथा मटेरियल दिया है, जो गणेश के लड्डू बनाए बताए जाते हैं, है ना। लड्डू में क्या होता है, उसमें जुड़े जुड़े छोटे छोटे दाने होते हैं इकट्ठे, और बाबा कहता है कई परम धाम भी ऐसा ही लगता है कि संगठित रूप में रहने वाले, संगठन का लाभ लेने वाले, लड्डू मीठा होता है, मुख मीठा करने वाले, उसमें ताकत भी होती है, रंग भी होता है, रंग भी गोल्डन होता है। तो वो आप आत्माओं को मैंने कितने ज्ञान के लड्डू खिलाए हैं, तो उसको आप यूज करो जीवन में। तो कल भी बाबा ने कहा था कि अपने चेहरे से आपको लगे कि हमें भगवान ने कुछ दिया है, अब वो जब आप लोग देखेंगे इनके पास इतना है, तो आप ही आपके पीछे लगेंगे कहाँ से लिया, और खुद भी कंटेंटेड रहो, तो हम सच्ची शिव जयंती मनाएंगे। ओम शांति।